हरिहं तारणं नमो सिद्धार्णं नमो आयिर्यार्णं नमो वज्झायार्णं नमो लोई सव्वसाहूणं एषो पञ्च नमो यारो सव्व पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येषिं पढमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, छठे पाठ तक विषय आकर के रुका हुआ है। आज छठा प्रारंभ करेंगे। इसमें तीन प्रश्नों का उत्तर जहां तक हो चुका है। श्रावक के तीन भेद किए गए थे, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। श्रावक में और गृहस्थ में भेद बताया गया था। श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान, जो अहिंसा मार्ग पर श्रद्धा रखते हैं और उस अहिंसा का पालन विवेक के साथ करते हैं और शक्यानुष्ठान अपने जीवन में अहिंसा को जो लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको श्रावक कहते हैं। गृहस्थ एक सामान्य शब्द है। गृहस्थ यानी श्रावक नहीं, घर में रहने वाले व्यक्ति को गृहस्थ कहा जाता है। उस व्यक्ति में यदि ये तीन गुण आते हैं तो श्रावक बनता है, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। ये तीनों आ जाते हैं तो वही गृहस्थ श्रावक बन जाता है। श्रावकों की तीन अवस्थाएं हैं, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और साधक श्रावक। प्रारंभिक दशा में सबसे पहले वह पाक्षिक श्रावक बनता है, फिर साधना में यदि वह आगे बढ़ता है तो नैष्ठिक बन जाता है और अंतिम समय में यदि समाधि धारण भी कर लेता है, संलेखना मरण का अभ्यास करके पंचम गुण स्थान में यदि मरण करता है तो वह साधक श्रावक की कोटि में आता है। पाक्षिक श्रावक को आठ मूल गुण होते हैं, सम्यक दर्शन सहित आठ मूल गुणों का जो पालन करता है उसे पाक्षिक श्रावक कहते हैं। इसको करते करते यदि वह प्रतिमा धारण कर लेता है, कितने हैं प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाओं में से एक, दो या सभी या कुछ प्रतिमाओं को धारण कर लेता है उसे नैष्टिक श्रावक कहा जाता है। यानी नैष्टिक श्रावक बनने के लिए प्रतिमा लेना अनिवार्य है। और पाक्षिक श्रावक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? 8 मूल गुणों का पालन और सम्यक्त्व का पालन। और साधक श्रावक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिमाधारी ही साधक श्रावक बनता है, ये तीसरा स्टेज है। अपन पाक्षिक श्रावक से डायरेक्ट साधक श्रावक नहीं बन सकते, ये एक एक स्टेज बीच में छोड़ नहीं सकते। जो नैष्टिक है वही साधक बनता है, यानी प्रतिमाधारी को ही संलेखना आवश्यक है, बाकी को संलेखना की जरूरत नहीं होती। आजकल लोग डायरेक्ट संलेखना पर पहुंचते हैं, मंदिर नहीं आए, आलू प्याज नहीं छोड़ा, आचार खाने का भी आचार नहीं छोड़ा, और डायरेक्ट मरते समय संलेखना संलेखना, उनको बुलाओ इनको बुलाओ, मर रहे हैं संलेखना, दौड़ते हैं, व्यर्थ है। एक को रखे बिना जैसे 0-0 रखना व्यर्थ है, उसी प्रकार ये दोनों स्टेज पर आकर के इनका पालन किए बिना, कौन कौन से, पाक्षिक और नैष्टिक, इन दोनों का पालन किए बिना संलेखना लेना व्यर्थ है। जो संलेखना ले रहा है, लेना चाहता है, उनके लिए इसका पालन जीवन भर करना चाहिए तो ही संलेखना है। और कुछ भी नहीं किया एकदम संलेखना लेने से बात ऐसी हो जाती है, मंदिर बांधा नहीं, बनाए नहीं मंदिर, और डायरेक्ट कलश चढ़ाऊंगा मंदिर पर, और कलश लेकर के आ गए। कहाँ चढ़ाओगे कलश? कलश काय के लिए है? मंदिर के लिए है। मंदिर ही नहीं बनाए तो कलश लेकर के दौड़ के आ गए, मेरा कलश चढ़ाओ, मेरा कलश चढ़ाओ। सुन रहे हैं? मेरा कलश चढ़ाओ, ये हमारा कलश हमने बोली में ले लिया है, मंदिर ही नहीं बना और कलश की बोली ले ली तुमने, ऐसी बात हो जाती है। पाक्षिक श्रावक बनना और नैष्टिक श्रावक बनना तो एक मंदिर बनाने की तरह है। देखो पाक्षिक श्रावक तो बेस फाउंडेशन है, और नैष्टिक श्रावक तो दीवाल है और छत है और शिखर है, ये नैष्टिक श्रावक। और कलश जो है वो साधक श्रावक यानी संलेखना, साधक श्रावक यानी संलेखना की साधना करने वाला श्रावक। ये तो इस तरह से यह क्रम बताया गया था। पाक्षिक श्रावक के संबंध में जहां तक विचार करें थोड़ा सा और, तो ये जानकारी लेकर के रखना चाहिए, जो जैन कुल में पैदा होते हैं। क्या बता रहा हूं? जो जैन कुल में पैदा होते हैं वे सम्यक दृष्टि हो या ना हो, 8 मूल गुण का पालन तो अवश्य करना चाहिए। ये बात अलग है कि 8 मूल गुणों का पालन भी सम्यक्त्व के बिना व्यर्थ है, मुनि व्रत पालन करना भी व्यर्थ है, प्रतिमा धारण कर लेना भी व्यर्थ है। परंतु जैन कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अगर 8 मूल गुणों का पालन नहीं करता है तो जैन की कोटि में, कुल की कोटि में नहीं आता। कुल जैन कुल, जैन कुलाचार जिसको बोलते हैं, कुलाचार अलग बात है, सम्यक दर्शन अलग बात है, सम्यक दर्शन भी धारण करता है और आठ मूल गुण को भी धारण करता है तो उसको हम भाव जैन बोलते हैं। भाव जैन, जैन की चार भेद हैं, नाम जैन, स्थापना जैन, द्रव्य जैन और भाव जैन। चार प्रकार के जैन होते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। इसका विश्लेषण करते देख लो। नाम जैन, नाम जैन का मतलब जैन परंपरा में जिसका जन्म हुआ है उसको जैन ही कहते हैं लोग, यानी जहां अहिंसक लोग हैं। परंपरा का मतलब ये नहीं कि कोई टीका है उनके लिए, थप्पा है। परंपरा का मतलब जहां अहिंसा का कुल है, जहां अहिंसा का पालन निरंतर चलता है, सप्त व्यसनी नहीं, मद्यमांस नहीं खाते और आठ मूल गुणों का पालन करते, सम्यक दर्शन का पालन करते, इसको कहते हैं जैन परंपरा। आचरण से जैन बनता है, कुल से जन्म से कोई भी जैन नहीं बनता। तो एक जो परंपरा है अहिंसकों की, उसको ही जैन परंपरा कहते हैं। अहिंसकों की, सम्यक दृष्टियों की जो परंपरा चली आ रही अपनी धारावाही रूप से, उसी को जैन परंपरा बोलते हैं। अब आचरण की अपेक्षा से तो वो परंपरा है, विदाउट आचरण से कोई परंपरा बनता है क्या? नहीं बनता। अब इस परंपरा में व्यसनी नहीं है, आठ मूल गुण का धारी है और सम्यक दृष्टि भी है, तो ऐसी परंपरा में जितने लोग इन तीनों विशेषताओं से युक्त हैं, कौन कौन से? व्यसनी नहीं है, आठ मूल गुण के धारी हैं और सम्यक्तु से सहित हैं, तो ये सभी जितने लोग हैं ये परंपरा वाले, इनको भाव जैन कहा जाता है। इनको कौन सा जैन कहना चाहिए? भाव जैन, चार में से अंतिम। इन्हें एक परिपूर्णता है इनमें, वो पाक्षिक श्रावक भी हैं और सम्यक दृष्टि भी है। जो पाक्षिक श्रावक होता है आठ मूल गुण का धारी होता ही है, आठ मूल गुण का जो धारी होता है वो व्यसनी हो नहीं सकता। उसमें पांच अनुवृत हैं और तीन मकार त्याग, अहिंसानुवृत, सत्यानुवृत, अचौर्यानुवृत, ब्रह्मचर्यानुवृत और स्वधार संतोष परिग्रह प्रमाण व्रत, परिग्रह प्रमाण व्रत। ये पांच अनुव्रत और मध्य मांस मधु का त्यागी, ये आठ मूल गुण हो गए और नौवां सम्यक दर्शन, ऊपर से एक सम्यक दर्शन। तो आठ मूल गुण भी है और सम्यक दर्शन भी, ये जिसके पास है वो भाव जैन है। सम्यक दर्शन है तो गुणस्थान बदल गया, पहला था चौथा आ गया, परंतु आठ मूल गुण का तो पालन करता है, सम्यक दर्शन का पालन नहीं करता, तो उसका गुणस्थान कौन सा रहेगा? पहला ही रहेगा। आठ मूल गुणों के आचरण का महत्व नहीं विदाउट सम्यक दर्शन के, उसका मूल्यांकन नकाई जानने ही जाता। सम्यक दर्शन एक है तो आठ मूल गुण जीरो है, तो एक के सामने एक भी जीरो रखोगे तो उसका कीमत हो गया दस, एक की जगह दस हो गया वो, यानी नौ का कीमत बढ़ गया। और फिर प्रतिमा रखोगे, नैष्टिक श्रावक बनोगे तो एक जीरो और, तो कितना बन गया? सौ, यानी 90% और बढ़ गया। महाव्रति मुनि बनोगे, महाव्रत रखोगे तो 1000, तो 900 और बढ़ गए, 900 बढ़ गए। और मुनि बन करके 13वें गुण स्थान में अरहंत ही बन जाओगे तो 10000, 10000। अब एक और रहोगे रखोगे तो 1,00,000 हो गया, सिद्ध भगवान 1,00,000 है, अरहंत भगवान 10000 हैं, मुनि महाराज 1000 हैं, श्रावक नैष्टिक श्रावक साधक श्रावक 100 हैं। अब ठीक है, नैष्टिक श्रावक और उनको वो तो कंपलसरी है, नैष्टिक जो बनेगा उनको साधक बनना ही पड़ता है, तो उनके लिए 100 है। पाक्षिक श्रावक 10 हैं और सम्यक दर्शन रहित श्रावक 0 है। अब वो महाव्रतों का पालन कर ले तो 0, पहले गुणस्थान में रह करके कोई मुनि बन जाए, छठे को प्राप्ति नहीं किया और महाव्रत धारण कर लिया तो महाव्रतों का पालन व्यर्थ है, 0 ही है वो विदाउट सम्यक दर्शन के। उन्हें क्या फल मिलता है? थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है, मोक्ष तो मिलेगा नहीं, कर्म निर्जरा होगी नहीं, कर्मों का आवागमन निरंतर जारी रहता है। कर्म संवर का, कर्म निर्जरा का होना ये असली फल है, चारित्र का, रत्नत्रय धारण करने का असली फल जो है ये है। फल 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 क्या? स्वर्ग मिले, भौतिक सुख मिले, इसी को फल बोलते हैं। रत्नत्रय का फल क्या है? मोक्ष है। असली फल तो वो है, साधक उसी के लिए कर रहा है सब कुछ, जो भी कर रहा है मोक्ष के लिए कर रहा है, कर्म निर्जरा के लिए कर रहा है। अब मोक्ष के लिए कर रहा है तो गुणस्थान तो बदलेगा ही, मोक्ष के लिए नहीं कर रहा है और अन्य के लिए कर रहा है तो अन्य फल के लिए कर रहा है। तो महाव्रतों का मैं इसलिए धारण कर चुका क्योंकि मुझे स्वर्ग चाहिए, तो दृष्टि बदल गई, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। रत्नत्रय को धारण करने का मतलब क्या होना चाहिए? मोक्ष। और उसके लिए हमने धारण नहीं किया तो हमारा गुणस्थान बदलेगा नहीं, पहला ही रहेगा। फिर महाव्रतों का पालन करेंगे, सम्यक दर्शन तो रहेगा नहीं। जो मोक्ष में अपेक्षा रखता है उनके लिए सम्यक दर्शन रहता है, जो भौतिक सुख में अपेक्षा रख करके स्वर्गादि सुख में अपेक्षा रख करके महाव्रत धारण करता है, तपस्या करता है, उसका फल मोक्ष है क्या? मांगे एक और मिले एक, ऐसा हो सकता है? उद्देश्य में संसार सुख है, महाव्रत धारण किया, संसार सुख उद्देश्य धारण किया तो मिलेगा वही? स्वर्ग के लिए कर रहे हैं तो स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष के लिए कर रहे हैं तो मोक्ष मिलेगा, जैसा हमारा उद्देश्य है वैसा मिलेगा। ये पर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी पड़ेगी, चारित्र का पालन करें, महाव्रत अनुव्रत नैष्टिक श्रावकपना, ये कुछ न कुछ आना पड़ेगा। तो इससे दो मार्ग हैं, क्योंकि ये महाव्रत आदि जो हैं, नैष्टिक श्रावक ये व्रत आदि जो हैं, इनके माध्यम से पुण्य इकट्ठा होता है, पुण्य संग्रहित होता है, और उस पुण्य का फल जो है स्वर्ग भी है और मोक्ष भी है। मोक्ष जाने तक वह सहयोग देता है साधक को पुण्य, और साक्षात तो उसका फल इंद्रिय सुख है, भोगो भोग सामग्री को उपलब्ध कराता है, कौन सा? ये व्रत आदि। व्रत आदि करते हैं ऐसा नहीं, व्रत आदि के कारण से जो पुण्य बंध होता है वो हमारे लिए सुख देते हैं। ये, तो ये ध्यान में रखना है। चार प्रकार के जैन है, नाम जैन, स्थापना जैन, द्रव्य जैन, भाव जैन। नाम जैन यानी केवल नाम जैन, नाम से जैन है, आचार विचार कुछ भी नहीं। जैन जाति में जन्मे हैं, हाँ जाति यानी जो अहिंसक जाति थी उसमें जन्मे हैं, लेकिन खुद का आचरण कुछ भी नहीं है। अब भले ही घर में सबका आचरण हो, लेकिन ये व्यक्ति नाम जैन है जो कुछ भी नहीं करता। घर में सभी करते हो तो वो भाव जैन है, तो उनके कुल में पैदा हुआ ना, इसलिए इसको जैन जैन कहा है। अन्यथा अन्यत्र पैदा होते हैं, जैसे मान लो घर में सभी लोग नाम जैन ही हैं, किंतु इनके वंशज जैन धर्म का पालन करते थे, आचार विचार उनमें था, लेकिन उस वंश के बाद, उस संतान जो पूर्वी संतान, उसके बाद इनका आचरण नहीं रहा, तो इनको नाम जैन कहेंगे। जैन घर में तो हुआ है, वो घर में पालन करने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन जैन घर में उनका जन्म हुआ है। परंतु कोई भी कुछ भी आचरण नहीं करता, न मंदिर आती, न कोई श्रद्धा, न आस्था, न दान, न कोई व्रत, न कोई अहिंसा, न कोई व्यसन से दूर रहना, कुछ भी नहीं है। धर्म से बिल्कुल शून्य है, तो उनको क्या कहेंगे? नाम जैन। ये जैन घर था, यहाँ पर इनके वंशज जैन ही रहती थी, पर वो अब नहीं है, उनके संतान ये है, ये सभी उनके आचार विचार को छोड़ चुके हैं, तो इनको क्या कहेंगे? नाम जैन। जिनमें आचार विचार बिल्कुल नहीं, वो नाम जैन। दूसरा स्थापना जैन। स्थापना जैन का मतलब ये है कि जिनमें आचार विचार नहीं था, जन्म से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं था, जिंदगी आधी व्यतीत हो गई, 50 साल हो गए, उस घर में सभी 50 साल वाले बैठे हैं, और उनको उपदेश मिल गया, सत्संग किया और उपदेश मिल गया, और वो लाइन पर लग गए, तो ये स्थापना जैन हो गए। भटके हुए उनको स्थापित किया, तो ये स्थापना जैन हो गए। वंश भटक गए थे, इनके वंशज पालन करते थे, और ये बीच में भटक गए 50 साल, इनको स्थापित किया, तो स्थापना जैन। द्रव्य जैन। अब भाव जैनत्व का पालन न करते हुए द्रव्य जैनत्व जितना भी है उसका पालन वह करता है, तो द्रव्य जैन। जैसे 8 मूल गुण पालन करता है, रात को भोजन नहीं करता है, छान के पानी पीता है, जीव दया करता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक नहीं करता, क्या? सम्यक दर्शन का पालन नहीं करता। रोज मंदिर आता है, सब कुछ करता है, लेकिन एक नहीं करता, सम्यक दर्शन धारण नहीं करता। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, सब देव समान, मंदिर भी एक दिन नहीं छूटता, लेकिन सब देव समान कहता है, ये कौन सा जैन? ये द्रव्य जैन। जीवन में सम्यक दर्शन आने के बाद भाव जैनत्व तो आता है, क्योंकि गुणस्थान परिवर्तन होता है वहां। नहीं, हाँ स्थापना जैन में क्या है, भाव व्रत का और द्रव्य व्रत का, द्रव्य व्रत यानी 8 मूल गुण, भाव व्रत यानी सम्यक दर्शन, इन दोनों का आरोप हुआ हो तो स्थापना जैन भी भाव जैन है। पर स्थापित नाम पड़ेगा ना, पहले से नहीं है वो, 50 साल गैप रहा है। एक विद्यार्थी 6 महीने स्कूल नहीं आया और 6 महीने से प्रारंभ किया तो 6 महीने पढ़ा, तो उसके पास अधूरा ज्ञान रहेगा, ये ठप्पा रहेगा कि ये विद्यार्थी पूरा नहीं आया है। ऐसा स्थापना जैन का मतलब जैन नहीं था, जैनत्व के आचार विचार का उपदेश देने से अब जैनत्व आ चुका है, वो स्थापना जैन। परंतु भाव जैन कौन? स्थापना जैनत्व के उपरांत जो आचार विचार उनका आ चुका है, कर रहा है, पालन करने लग गया, अब ये भाव जैन बन गया। स्थापित करना पड़ा इनको, एक स्थापित किए हुए बिना ही वो रहता है, वंश परंपरा से ही पालन करता है। हाँ, वंश परंपरा से ही सभी लोग मतलब सम्यक दृष्टि रहते हैं, सम्यक का पालन करते हैं, कराते हैं, ऐसा रहता है कि नहीं? कोई अपने घर में माता पिता सम्यक दृष्टि हैं और अपनी संतान अपने बच्चों को भी सम्यक दृष्टि बनाए रखते हैं, आचार विचार वही सिखाते हैं, तो भाव जैन, खुद भी भाव जैन और दूसरे को भी भाव जैन रखते हैं। तो इस जन्म से ही भाव जैनत्व का पालन कर रहे हैं, तो भाव जैनत्व सब में है। ऐसा ये हुआ। अब ये आता है कि मैं ये कह रहा था, जो जैन घर है उस घर में सम्यक दर्शन भले ही न हो, परंतु वो एक कुल है, हमारी वंश परंपरा का एक गौरव है। क्या? 8 मूल गुणों का पालन करना। सम्यक दर्शन का भले ही पालन न कर रहा हो, सम्यक दर्शन जन्म के 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त से पहले तो आता नहीं जीवन में, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त व्यतीत होना चाहिए तब सम्यक दर्शन को धारण करने की पात्रता आती है, परंतु उससे पहले 8 मूल गुणों का आचरण कर सकता है कि नहीं? करा सकते हम बच्चे को। और इसलिए मुंजी मुंजी जो कहते हैं अपन, वो यही है। मुंजी क्या है? मुंजी में मुख्य रूप से इन्हीं 8 मूल गुणों का पालन कराया जाता है बच्चे को, और गुरुओं के सानिध्य में जाकर। अब गुरु न रहने से आजकल आज तक क्या रहा, ये कहीं भी जाकर के हम करा लेते थे, और वो क्या करते थे? कुछ नहीं, स्नान कराया, कपड़े बदलवा दिया, मुंडन कर लिया, हो गया तुम्हारा, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी आवश्यकता है ही नहीं इस क्रियाकांड की। सीधा डायरेक्ट आपका बच्चा समझदार हो गया 8 साल होने के उपरांत। अब वो व्रत क्या है, अव्रत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, करना क्या है, न करना क्या है, ये कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान आने के बाद उसको सीधा दिगंबर गुरुओं के पास जाकर के उपदेश दिलाओ, कितने का? 8 मूल गुणों का। और उस दिन अष्टक सिखाओ अपने बच्चे को, देव शास्त्र गुरु की पूजन कैसा करना प्रारंभ, अष्टक सिखाओ। अष्टक सिखा करके 8 मूल गुणों का आरोप व्रत दिलाएंगे तो इसी का नाम असली मुंजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर ये जो क्रियाकांड किया जाता है ये क्या है? तो ये है कि जो कुल से जैन नहीं है और अजैन है, वो जैन बनना चाहता है, तो उनके लिए उन्हीं की शैली में जैनत्व दीक्षा दी जाती थी। जैसे कोई एक ब्राह्मण है, वो जैनाचार से प्रभावित होकर के इसका पालन करना अपेक्षा करने लगा। तो उनके आचार विचार घर के कैसे रहते हैं? अजैन के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, तो उनकी यहाँ परंपरा ये है, ये बनाना, जनेऊ पहनना, वो करना, ये सब उनके यहाँ है। तो उन्हीं की शैली में जैन धर्म स्वीकार कराया। ये उनके लिए अनिवार्य है, ये जो कुल परंपरा से जैन ही हैं, उनके लिए जनेऊ पहनाना और वो मुंडवाना और भिक्षा मंगवाना, ये है क्या आपने कहा? ये नहीं है। नहीं, बाहर से आया नहीं वो, बाहर से जिसको लिया जा रहा है उनके लिए ये विधि अपने यहाँ है। हाँ, उसके लिए है, ये आदि पुराण में इसका विधि विधान है, अपने आचार्यों ने उसके लिए भी एक वो रखा है, व्यवस्था रखी है। जो वहां से यहाँ आए हैं और जैन बने हैं, उसकी स्मृति के लिए, उसके स्मृति के लिए कि ब्राह्मण से ही ये जैन बने हैं, इसकी स्मृति के लिए ये सब दिए जाते हैं, या जो भी दिया जाता है तो ये ब्राह्मण से जैन बने हैं, ये स्मृति रहे। ये ओरिजिनल जैन नहीं थे, कुल परंपरा से जैन नहीं थे, पहले अजैन थे, अब इनको जैन बनाया गया है, स्व इच्छा से वो बना है, आचरण कर रहा है, और उनको जैन गुरु ने बनाया है। ऐसे पहले काल में बनाया जाता था, ओरिजिनल जैनों को यह आवश्यक नहीं था, जनेऊ पहनना, ये मुड़वाना और झोली लेकर के मंगवा मांग करके खाना, ये कहां की परंपरा है? जैनों की है कि उनकी है? तो भिक्षाम देही, ये जैनों में है क्या? नहीं, घूम करके कभी भी आहार मांगते नहीं, ये मांगने की परंपरा ब्राह्मणों की, उनके यहाँ यही विधि है। परंतु उनमें से कोई जैनाचार को स्वीकार करना चाहता है तो उनकी विधि से ही उनको स्वीकार किया गया और पहचान बना करके रखा गया कि ये ब्राह्मण थे, जैन बने हैं, क्योंकि देखो इनके पास यज्ञोपवीत है। ओरिजिनल जैन के पास यज्ञोपवीत की जरूरत नहीं, जैनत्व की पहचान यही है कि यज्ञोपवीत न होना, वो मूल जैन है। जिनके पास यज्ञोपवीत नहीं होता है, जनेऊ नहीं होता है, वो मूल जैन है, और जिनके पास होता है वो स्थापित जैन है। ये स्थापना जैनत्व के, जैनत्व का विधि विधान आदि पुराण में है, आदि पुराण में स्थापित जैन के लिए अनिवार्य है। ये जो जिनको जैन बनाना है उनके लिए अनिवार्य है, बोलो नहीं, सुन लो, किन के लिए अनिवार्य है? हाँ, जो हम परंपरा से ही जैन है, अब हमारे लिए क्या अनिवार्य है? अब किसी को बनाना हो तो उस समय उसको दिया जा सकता है। और दूसरी बात, यज्ञोपवीत ये जैनत्व का कोई वो नहीं है, सम्यक दृष्टि है या वो है, ये बाह्य कोई पहचान, अनिवार्य पहचान नहीं है। रत्नत्रय का अनिवार्य पहचान नहीं है ये, वो धागा रत्नत्रय का पहचान नहीं, वो उसका पहचान है कि ये जैन था नहीं, ये स्थापना जैन है, उसकी पहचान है। हाँ, करना था ना, लेकिन स्थापित होने वाले चाहिए ना, तो आज भी करते हैं उसी विधि विधान से, उनको स्वीकार करते हैं। अब ये विधि क्या जरूरत, ये प्रश्न उठता है, ये प्रश्न उठता है कि ये स्थापना करने की ऐसी इसी विधि से क्या जरूरत है, प्रश्न उठता है। तो देखो जब कोई आपके बीच में आता है तो वो समाज का हो जाता है, समाज में आ जाता है। आपका लेन देन व्यवहार शादी वादी और रोटी बेटी ये व्यवहार भी जुड़ जाता है। फिर जैन धर्म का पालन करने के लिए कोई जैन समाज में ही दीक्षित होना अनिवार्य नहीं, वो तो वहां पर रह करके भी कर सकता है। जैन धर्म कोई संप्रदाय वाला धर्म नहीं, वर्ग वाला धर्म नहीं, वो तो कहीं भी रह करके कर सकता है जैन धर्म का पालन। परंतु वह समाज से भी जुड़ना चाहता है तब ये प्रश्न आता है कि उसको उसी विधि से स्वीकार करो, उसी विधि से स्वीकार करो जो उसकी विधि विधान है, उनके यहाँ जो उनकी संस्कृति में जो कुछ भी था यज्ञोपवीत पहनना इत्यादि। क्यों बंद कर रहे, आवाज डिस्टर्ब होती है। फिर क्या बता रहे, वो आपके समाज से जुड़कर आपके बीच में रोटी बेटी का भी व्यवहार करना चाहते हैं तब का प्रश्न आता है। उनको उसी शैली में स्वीकार करो, उनके यहाँ जो भी आचार विचार यज्ञोपवीत के थे वो थे ये थे सब दे दो, और कैसे उनको घुमाओ जोली दे करके घुमाओ उसी तरह से उनको आठ मूल गुण दे दो, सम्यक दर्शन का व्रत दे दो। अब ये बाहरी क्रियाकांड है कि उनको घुमाया उनको घुमाया, उनको यज्ञोपवीत दिया, उनसे पूजा करवाई, सब कुछ उस ड्रेस पर सब कुछ कराया। अब इनको आपने समाज में स्वीकार किया, जैनत्व तो आ गया, वो जैनत्व तो यहाँ स्वीकार करने से आता है ये नहीं, वो तो अपने घर में ही रह करके भी जैनत्व तो ला सकता है, वहां रह करके भी ला सकता है, लेकिन समाज में स्वीकार करने की वो शामिल होने की अपेक्षा उनको थी। भाव जैनत्व तो पहले से आ चुका है, वो तो जब से आपके आचार विचार से तत्व से प्रभावित हो गया आचरण करने लगा था, तो क्या सम्यक दर्शन नहीं हुआ था? सम्यक दर्शन कोई देने की और लेने की चीज नहीं, वो तो वहीं पर आ जाता है जब आप श्रद्धावान हो जाते हैं। सम्यक दर्शन श्रद्धा का प्रतीक है, तो सम्यक दर्शन और आचरण आ चुका था उनका, लेकिन किससे जुड़ना चाहता था? हाँ, आपके बीच में वो आकर के रोटी बेटी आदि का भी व्यवहार मेरा चले, ये अपेक्षा थी। तो समाज से जुड़ते समय आपने क्या किया कि आपके आचार विचार वैसे ही रहने दें, यानी आप जिस विधि से आपकी मुंजी होती थी, आपके यहाँ जिस पद्धति से होती थी उसी पद्धति से होने दें, और हम उसी पद्धति से यहाँ तुमको कराएंगे। वो इसलिए कराएंगे कि ब्राह्मण से ये जैन बने, इसकी पहचान के लिए ब्राह्मण से जैन बने हैं, इसकी पहचान के लिए। अब वो पहचान आ गई, आप आपके मन में ये रहेगा कि ये ब्राह्मण से जैन बने हैं, उनके मन में ये रहेगा कि मैं ब्राह्मण से जैन धर्म को स्वीकार कर चुका हूं। ये स्मृति रहे, स्मृति के लिए बनाया गया ये क्रियाकांड, जैनत्व क्रियाकांड नहीं। जो अजैन जैन बनना चाहता है उनके लिए है, और जो जैन धर्म स्वीकार करके बहुत समय व्यतीत हो गया, हजारों साल व्यतीत हो गए, और उनकी वंश परंपरा में सब जैन 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 के आचार विचार से रहे, उनके लिए भी जरूरत नहीं आजकल समझ ही नहीं है लोगों में, विवेक नहीं है, किसके लिए है, क्या है, कौन से जैन आचार विचार, कुछ भी वो नहीं है, विवेक ही नहीं है। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि वो जनेऊ जो है उसके बिना श्रावक ही नहीं कहलाता, उसके बिना तो मुनि को आहार दान देने की पात्रता भी नहीं आती, उसके बिना तो वो नहीं कर सकता, उसके बिना तो ये नहीं कर सकता, दिमाग खराब करते हैं। हाँ, यही समझ थी क्या? नहीं, अब यही मेंटेलिटी बनाया गया, सत्य विषय अलग है और मेंटेलिटी कुछ और है। उल्टा सुल्टा बिल्कुल। अब ये धारणाएं ये खतरनाक बहुत होती हैं। कोई आहार दान देना चाहता है तो आहार दान से वंचित रहना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि है, आठ मूल गुणों का पालन करता है, लेकिन उसके पास वो धागा नहीं है तो आहार देने का अधिकार ही नहीं है, ये ऐसा हो जाएगा तो ये तो मूर्खता हो जाएगी। सम्यक दृष्टि से आहार हम नहीं ले रहे हैं तो ये क्या है? ये है? और कुछ साधु ऐसे हैं जो इस बात को समझते नहीं और श्रावकों के ऊपर थोप देते हैं। अब भले वो मिथ्यातुरी हो, कुछ व्यसनी हो, उसको नहीं पूछते। क्या पूछते? धागा पूछते हैं वो। अब धागे में आचार विचार है क्या? वो धागे में अटक गए, खुद तो धागा नहीं पहनते, दूसरे को धागा पहनवा देते हैं, दिगंबर बन गए। ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। आज श्रावक जो है उलझ गया है, इसी में क्रियाकांड में उलझ गया है, धागे में उलझ गया है, उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा समझ उसमें उसके दिल में बैठ गई है। लेकिन ये ठीक नहीं है। धागा तो उसके लिए था जिस जो बाहर से अंदर आ रहा था समाज में, और उसके लिए भी अगर जैनत्व तो समझ में आ गया, आपके समाज से भी नहीं जुड़ा मान लो, क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता? नरक में नारकी जीव सम्यक हो रहा है, स्वर्ग में देव सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, त्रिरंज गति में त्रिरंज को सम्यक दर्शन हो रहा है, क्या धागे से हो रहा है? तुम्हारा सम्यक दर्शन क्रियाकांड नहीं, तुम्हारा सम्यक दर्शन कहीं धागे में अटकने वाला नहीं। धागा सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक तो का आचार विचार, सात तत्वों का श्रद्धान, नित्य देव शास्त्र गुरु का पूजन, दर्शन, विधि विधान, ये आवश्यक है। और ये सब कर रहे हैं तो धागे का कोई महत्व नहीं, मोक्ष तो इससे मिलने वाला है, धागे से नहीं। धागा इज इक्वल टू स्थापना जैन, वो स्थापना जैनत्व का प्रतीक है। क्या इस जन्म में तुमने स्थापना जैन तो स्वीकार कर लिया कि पहले से जैन कुल में हैं? आप पहले से जैन थे क्या? नहीं तो फिर धागा क्यों पहन रहे? नहीं, अज्ञानी साधुओं ने ऐसी मेंटेलिटी बना दी आप लोगों की, आप क्रियाकांडी बन के रह गए। उसको रत्नत्रय का सूचक बताया, अब ग्रंथ पढ़े नहीं, उसका अर्थ निकाले नहीं, स्वाध्याय किए नहीं, विचि विचार हुआ नहीं, बस बाहरी इसको ही महत्व देते चले गए। ये बताओ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पहचान श्रद्धा है क्या धागा है? श्रद्धा है कि धागा है? तो धागे की ही श्रद्धा किया और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा नहीं हुई तो गले में धागे ही लटकता रहा केवल। कहाँ भटक रहे हैं हम लोग? क्या समझ है जैन धर्म के संबंध में? उत्तर भारत में कोई भी धागा नहीं पहनता, कहीं भी परंपरा उत्तर में है ही नहीं। यहाँ पर इसलिए है, एक समय था यहाँ पर ब्राह्मण बहुत थे और जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते थे। उस समय में उनको जैन स्थापित स्थापना जैन बनाया गया, 200-300 लोगों को एक जिनसेन आचार्य उनको वो बनाते थे, जैन बनाते थे और स्वीकार करते थे। वो प्रभावित थे जैन धर्म के तत्वों से, अहिंसा के तत्वों से। उनके लिए ये सब कुछ क्रियाकांड उनके जो थे उनके तो पहले से ही था। वही यज्ञोपवीत, वही ड्रेस, वही मुंडन, ये सब कुछ उसी पद्धति से उनको स्थापना जैन बनाया और समाज में उनको स्वीकार किया। सवाल ये था कि उनको समाज में लेना किस प्रकार से, तो उनकी एक पहचान रखी कि ऐसा रहने दो ये, क्योंकि ये पता चले कि ये स्थापना जैन है। वही तो समझा, वही चर्चा चल रही है, वही चर्चा चल रही है। अब उनको उनको उनकी पहचान, उनकी पूर्व की पहचान रहे, क्योंकि ये ब्राह्मण से ही स्थापना जैन होकर के जैन समाज में आए हैं। जैन समाज में आने के बाद इनकी पहचान पूर्व की रहे, इस दृष्टि से उसको कायम रखा। पर ये जैन बनने वाले जीव को अनिवार्य परिस्थिति नहीं है। वहां भी नहीं, यहां भी नहीं, समाज में आने के बाद भी नहीं, बाहर भी नहीं। पर कुछ समय के लिए ये पहचान रहे इनकी, देखें किस प्रकार से आचार विचार इनके बचते हैं, इस दृष्टि से उसको रखा। और वह पूरी तरह से परंपरा से चला आ रहा है। और पहनना सबको अनिवार्य हो गया, बना लिया अपन ने, वो पहन रहा है तो अपन भी पहने, शौक हो गया। वो पहन रहा है तो हमको भी, मतलब जो स्थापित थे वो भी पहनने लगे और जो पहले से मूल से थे वो भी पहनने लगे। पहनना एक शौक हो गया, लेकिन उसके पीछे कोई मायना नहीं रखता, उसकी कोई उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है अष्टमूल गुणों का, महत्व है सम्यक दर्शन का, महत्व है आचार विचारों का। उत्तर भारत में आज भी जैन, कोई भी जैन धागा नहीं पहनता, तो क्या वो जैन नहीं माने जाएंगे? आचार विचार आपसे बहुत बढ़िया है उनका, पर धागा नहीं, तो क्या जैन नहीं? त्रिरंची गति में धागा नहीं, लेकिन वो प्रतिमाधारी है। त्रिरंची आठ मूल गुण का धारी है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके पास धागा नहीं, तो क्या वो जैन नहीं? एक हाथी, एक घोड़ा, एक बंदर, कहाँ पहचान है उसकी? जैन धर्म का क्या पहचान है उसके पास, बोलो? आचरण है, आठ मूल गुणों का पालन कर रहा है, सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान में आ गया है, नहीं पंचम गुणस्थान में, अनुवृत्ति हो गया, प्रतिमाधारी हो गया, तो पंचम गुणस्थान में। दो प्रतिमा पालन कर सकता है त्रिरंच, दो प्रतिमा, 11 प्रतिमा में से पहले और दूसरी दो प्रतिमा पालन कर सकता है, तो उसकी बाहरी पहचान क्या है बताओ? यदि ये समझते हैं, मेंटेलिटी ऐसी है कि ये जैन धर्म की पहचान है, इसके बिना तो हम जैन ही नहीं, तो त्रिरंच की क्या पहचान बताओ? देवों का क्या पहचान बताओ? उत्तर भारत के श्रावकों का क्या पहचान है बताओ? वो तो पहनते नहीं, तो चाहे जैन ही नहीं कहलाएंगे। अपन जो है ये बात गहराई से सोचते नहीं, क्योंकि पढ़ते नहीं, जैन शास्त्र पढ़ते नहीं, इसलिए हम क्रियाकांडी और परंपरावादी बनकर के रह जाते हैं। जो पहले से है पहला पासून, धागा भी पहला पासून, देवता भी पहला पासून, सब पहला पासून। और स्वाध्याय न करने का फल है ये, पहला पासून पहला पासून। जैन शास्त्र पढ़ना तो चाहिए, और उत्तर भारत के श्रावक जैन शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, एक से बढ़कर के एक ज्ञानी है वहां। इसलिए वो पहले पासून वाली बात उनकी जरा भी कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिलती। कल दो बहनें आई थी ब्रह्मचारिणी, वो कह रही थी कि महाराज हम इधर के मंदिरों में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं हम हिंदू मंदिर में घुस गए। अब 9 दिनों में वही चल रहा है सब जगह, निकाल करके रखा है और सजाया है उसको। अनुभव ऐसा होता है एक जैनी को जिसने जिंदगी में देखा नहीं इसको, मंदिर में जाते ही ये हिंदू मंदिर है कि जैन मंदिर है पहचान में नहीं आता, कहां घुस करके हम आ गए अंदर ऐसा लगता है। और यहां बिल्कुल सहज है वो, यानी हिंदुत्व का छाप इतना गहरा आप लोगों के ऊपर आया है, मंदिर में घुस गया है वो। और ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि हम स्वाध्याय नहीं करते, शास्त्र नहीं पढ़ते, और उसका छाप आ गया। अब स्वाध्याय करोगे तो वो धुल सकेगा, स्वाध्याय नहीं करोगे तो ये छाप बने रहेंगे। स्वाध्याय करोगे तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा वो, इसलिए स्वाध्याय की जरूरत है। जिंदगी में बिना स्वाध्याय के धर्म की महिमा प्रकट होने वाली नहीं है। जैनत्व की हमारी पहचान क्या है मंदिरों में आज बताइए आप? जैनत्व की पहचान ये है कि रागी देवता वहां पर होना ही नहीं चाहिए, ये जैनत्व की पहचान है मंदिरों की। वीतरागी भगवान के अलावा दिगंबर जैन मंदिर वो इसका हेडिंग है, मंदिर का बोर्ड पर लगा है दिगंबर जैन मंदिर, वहां सपोज दिगंबर जैन मंदिर वहां जाए तो रागी आएगी मिक्स मंदिर, रागी वीतरागी मिक्स मंदिर। उनको रखने का मतलब ही क्या है, किस काम में आते हैं वो? भगवान काम में आ रहे हैं, आत्म कल्याण का काम में आने वाले भगवान है, दर्शन तो भगवान का करना है। मंदिर बांधने का उद्देश्य भी यही रहता है कि भगवान का दर्शन हमें करना है, क्या इनका दर्शन करना है? बहुत पहले की भूल है ये, और वो पहले की भूल इसी एक शब्द पर चला रहा है, पहला पासून एक ही शब्द पर रूढ़िगत होकर के आ रहा है। हाँ नहीं, अब नया मंदिर जो बनने लगे ना, अब वो सुधार आ रहा है, लोग स्वाध्यायशील भी होने लगे, सत्य को जानने लगे, पहचानने लगे, अब तो सुधार आ रहा है धीरे धीरे। लेकिन पुराने मंदिरों की जहां तक परिस्थिति इतनी बेकार है कि वहां जाते ही किसी को मन नहीं लगेगा, ये हिंदू मंदिर है कि जैन मंदिर, पहचान में नहीं आता, और देख करके मन में विकार आता है। जहां वीतराग भाव से वीतराग की उपलब्धि के लिए, मन की निर्मलता के लिए हम मंदिर आते हैं, वहां देवी देवता दिखे, मन में विकार तो आता है, ये क्या? उपास की तरह व्यवहार हो रहा है उसके साथ में, पूज्य की तरह प्रतिष्ठित किया जा रहा है, बल्कि उसके ज्यादा वीतरागता से भी ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये जो है, ये पुराने मंदिरों में बुरी परिस्थिति है, आज बहुत बुरी परिस्थिति है। हाँ? नहीं नहीं हुआ क्या था, ऐसा नहीं था। वो मंदिरों में घुस करके वीतराग प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था या उनको नष्ट किया जा रहा था, तो डर दिखाने के लिए उनको बिठा दिया गया। कोई तोड़ने वाला आ जाए तो इसको देख करके डरे और लौट जाए। इस उद्देश्य वो किया गया था, इस उद्देश्य किया गया था। आज जो है वो हमें ही खा रहा है, हमें ही डरा रहा है। आज उसको छोड़ेंगे तो हमें क्या होगा, ये हमें ही डराने लगा। दूसरे को डराने के लिए रखे थे वो हमारे ही डर का निमित्त बन रहा है आज। ये देखो तो कहां हम भटक गए, कितनी दूर हो गए। जैनत्व से बहुत दूर होते जा रहे हैं। समझना, विषय पीछे पड़ गया। ये मैं वो बता रहा था कि जैन कुल, कुल यानी कुल, जहां पर अहिंसा का पालन, सम्यक्त्व का पालन होता है, जैन कुल। एक बात ये है कि सम्यक दर्शन तो 8 साल बाद आता है। उससे पहले 8 मूल गुणों का पालन एक बालक भी कर सकता है क्या? नहीं। 8 मूल गुणों का पालन तो आचार्य आपको देखा देखिए कॉपी मार करके कर लेगा, पर सम्यक तो ऐसा नहीं है। आचरण एक बाहरी प्रवृत्ति का नाम है, पर श्रद्धा वो तो सम्यक्त्व का प्रतीक है। और वो श्रद्धा करने के लिए तत्वों का ज्ञान भी तो चाहिए, इसलिए सम्यक्त्व की उत्पत्ति तो 8 साल अंतर्मुहूर्त के बाद होता है। कहा इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। आचरण से, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो कंपाउंड है उसका। आचरण कारण है सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए, और सम्यक दर्शन न हो तो आचरण नहीं आता, ऐसा नहीं। आचरण को लाना बहुत आसान है, 1 मिनट का काम है वो। और सम्यक दर्शन 8 साल व्यतीत होने के बाद ही पैदा हो सकता है, उससे पहला नहीं। आचरण तो कभी भी आ सकता है, क्यों? आचरण एक देखा देखी भी किया जा सकता है, कॉपी मार के। आप शाकाहारी हैं तो मैं भी शाकाहारी, ये बच्चा भी सीख लेगा। आप सम्यक दृष्टि हैं तो मैं भी सम्यक दृष्टि, ये बच्चा सीख नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन ऐसा कॉपी मारने का विषय नहीं है, वो तो श्रद्धा का विषय है। गुरु का उपदेश चाहिए, वो भी गुरु का उपदेश ग्रहण करने की शक्ति 8 साल के बाद आती है। उपदेश ग्रहण की शक्ति भी तो आना चाहिए, वो 8 साल के बाद आती है। तो मैं ये बता रहा था एक विषय, जरूरी विषय, कि जैन कुल परंपरा में सम्यक दर्शन मान के चले नहीं है, तो द्रव्य जैनत्व तो रह गया। 8 मूल गुण हैं आपके परिवार में, सभी लोग 8 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, और कुल परंपरा से भी कर रहे हैं, मान लो पहले पासवान से भी कर रहे हैं, तो द्रव्य जैनत्व तो सुरक्षित है, और ये होना बहुत आवश्यक है। सम्यक दर्शन 8 साल के बाद मिले कोई दिक्कत नहीं, परंतु कुल परंपरा से 8 मूल गुणों का आचार विचार तो सुरक्षित रहना चाहिए, कुल परंपरा से सदा ही रहना चाहिए घर में। आप मांसाहारी न बने, शराबी न बने, व्यसनी न बने, ये सम्यक दर्शन का कंपाउंड वाली बात है, ये सम्यक दर्शन का सहयोग देगा। व्यसनी सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? एक रेंच भी अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो व्यसनी नहीं मिलेगा। जहां सम्यक दर्शन है व्यसन नहीं रहेगा, और सम्यक दर्शन उत्पन्न होने से पहले ही हम व्यसन छोड़ करके आचार विचार रखते हैं तो सम्यक दर्शन को उत्पन्न होना आसान हो जाएगा। व्यसन से छूटे बिना सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं तो ये तो असंभव है। इसलिए आठ मूल गुण को, सप्त व्यसन का त्याग, आठ मूल गुण का पालन, इसको कंपाउंड बताया। सम्यक दर्शन के लिए ये कंपाउंड का काम करता है। सम्यक दर्शन हमारा महल है, मकान है। मकान की सुरक्षा कंपाउंड से है। तो मकान बनने से पहले क्या बनना चाहिए? आपकी जितनी जगह है उसको घेर करके कंपाउंड बना लेना चाहिए। आप करते भी हैं ऐसा? करते कि नहीं? मकान अतिक्रमण हो जाएगा। ये तो आठ मूल गुण हमारा कंपाउंड है, जिससे तुम उधर गए ना तो आउट हो गए। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के अधिकारी आप नहीं रहे। आपने कंपाउंड खींच के रखा है तो सम्यक दर्शन बहुत आसानी से मिलेगा। ये इसका मतलब मैं ये बता रहा हूं, सम्यक दर्शन आठ साल बाद आता है, वो प्रतीक्षा करो आठ साल तक। छोटे हो तो प्रतीक्षा करो आठ साल तक, परंतु जन्म के साथ ही आपके बच्चे को आप कैसे रखो? आठ मूल गुणों से सहित रखो। ये उसका द्रव्य जैनत्व है। आपके बच्चे में आप द्रव्य जैनत्व को सुरक्षित रखेंगे तो बाल जैनत्व आठ साल के बाद आ जाएगा। ये है जैन परंपरा, जैन मार्ग। इसलिए हमारे जैन कुल में कोई भी मांसाहारी मिलता है तो जैनी नाम जैन भी नहीं है। वो किसी चार में एक में भी नहीं बैठता है। वो उसके वंशज भले ही वो हो जैन हो, परंतु उस नाम को भी उसने मिटा दिया। उनके नाम को मिटाना ही अपने नाम जैनत्व का खत्म करना है। जहां मद्य मांस मधु का सेवन होता है वहां पर चार में से कोई एक भी जैनत्व उसके पास नहीं है। न नाम जैन है, न स्थापना जैन है, न द्रव्य जैन है, न भाव जैन है। अब ऐसा भटका हुआ यदि कोई जैन हो तो उसको स्थापना जैन बनाना पड़ेगा और फिर ये जैन है ऐसा नाम रखना पड़ेगा। फिर नाम जैन, फिर स्थापित हो गए तो स्थापना जैन, और फिर सम्यक दर्शन भी कर रहा है तो भाव जैन, आठ मूल गुण कर रहा है तो द्रव्य जैन, सम्यक दर्शन को भी कर रहा है तो भाव जैन। नीच कुल और उच्च कुल हम किसे कहें? हाँ, बाहरी आठ मूल गुणों के आधार से ही कहना चाहिए। सम्यक तो और आठ मूल गुण इसके उच्च, एक द्रव्य उच्च और एक भाव उच्च। भाव उच्च कहलाना चाहते हैं तो वहां आठ मूल गुण भी चाहिए और सम्यक दर्शन भी चाहिए। तो भाव उच्च है, द्रव्य उच्च जो शाकाहारी है, आठ मूल गुण के धारी है, वो द्रव्य उच्च है। और इसमें भी शिथिलाचार आ गया है तो नीच है। व्यक्ति आचरण से ही उच्च बनता है और आचरण से ही नीच बनता है। ये काय शुद्धि कैसे, काय शुद्धि किस प्रकार? हाँ, इसको नहीं देखा जाता। जिस दिन हम त्याग करते हैं वही काय शुद्धि। खाया हुआ 24 घंटे के अंदर पच करके उधर हो जाता है, अशुद्ध खाया हुआ। और जिसको खाते हैं उससे भी वही बनता है जिसको खाते हैं। फिर काया शुद्ध कहाँ है बताइए आप? आप रोटी खाते हैं तो मांस बनता है, काया शुद्ध कहां है? मांस खाते हैं तो मांस बनता है, काया शुद्ध कहां है? यहां शुद्धा शुद्धि का सवाल नहीं, सवाल है धर्म का, अहिंसा का, दया का, करुणा का। मांस खाने वाला दयालु नहीं, नीच है। आचरण पर हमने नीच कहा, आचरण के आधार से नीच हुआ। नीच कौन? जो दया नहीं कर रहा है, खाता नहीं लेकिन दया भी नहीं करता, ये नीच ही है। मांस खाता नहीं पर दूसरे पर दया भी नहीं करता, रक्षा भी नहीं करता, नीच है, उसको नीच ही कहेंगे। खाता भी है और दया भी नहीं करता, वो दोनों से नीच है। खाता है लेकिन दया भी करता है, वो भी नीच है। खाता है, दया कर रहा है, खाने के लिए ही दया कर रहा है। एक साल तक सार संभालता, हट्टा कट्टा बना देता है, काय के लिए? तो वर्तमान में तो दया कर रहा है ना, सेवा कर रहा है ना, खिला पिला रहा है ना। इस प्रकार की दया दया है क्या? ये नीच है, दोनों से ही नीच है। खाने के लिए बड़ा बना रहा है उसको। रास्ते पर कल के दिन देखा, ट्रक के ट्रक आ रहे हैं। हाँ, देखने को मिल गया मुझे, जहां पर लोग व्यायाम के लिए और शुद्ध वायु ऑक्सीजन लेने के लिए व्यायाम के लिए जाते, उसी स्थान पर हमने देखा ये स्थान तो दूषित हो गया। जहां सुबह उठ करके पवित्र भावना के साथ हम ऑक्सीजन खाने आते हैं, योगासन करते हैं, हंसना सीखते हैं, वहां रोने की बात दिख गई। हाँ, अब ये कहां जा रहे हैं? सब वही हट्टा कट्टा बनाया है, साल भर पालन किया है, पर काय के लिए? मारने के लिए। ये नीच है। आचरण से ही नीच, आचरण से ही उच्च, शरीर से उच्च, खाने से और अशुद्धि शुद्धा शुद्धि से नीच उच्च नहीं होता। ये कहने का मतलब ये, ऐसा होता तो कई बार गलती से हम भी खा जाते हैं। किसी दिन खाना खाते खाते एक अली दिखने में नहीं आया और अपन ने खाया, तो क्या मांसाहार नहीं? तो अपन उच्च कैसे बचेंगे? नीची हो जाएंगे। शरीर की शुद्धि कैसे करेंगे? शरीर अशुद्धि, शरीर की शुद्धा शुद्धि का कोई महत्व नहीं, महत्व है आचरण का। देख के खाओ, अभी तक खाए कोई बात नहीं, अब देख के खाओ। शरीर पहले भी अशुद्ध था, भविष्य में भी अशुद्ध ही रहेगा। तुम शाकाहार भी खाते हो तो मांस बनता है, मांस शुद्ध है कहां? रक्त शुद्ध है कहां? कहीं गिर जाओगे, फोड़ा हो जाएगा तो बदबू आने लगता है, शुद्ध है कहां शरीर? शरीर तो त्रिकाल में कभी शुद्ध नहीं हो सकता, पर इस अशुद्ध शरीर में जो आत्मा है वह सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धारण करता है तो शरीर भी पवित्र माना जाता है। रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगसा गुण प्रीति, रत्नगढ़ साहब का चरण आया, रत्नत्रय आते ही यह अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो जाता। शुद्ध होता है का मतलब शुद्ध हो जाता है ऐसा नहीं कह रहा हूं, शुद्ध माना जाएगा, रत्नत्रय ही नहीं है तो आत्मा भी अशुद्ध और शरीर भी अशुद्ध। शरीर तो पहले से अशुद्ध, पर रत्नत्रय, पवित्र रत्नत्रय आ गया तो शरीर शुद्ध हो ही जाता है। ये व्यवहार से कहा जाता है कि शरीर शुद्ध हो गया, लेकिन हुआ क्या? नहीं होता है। क्या मुनि महाराज रत्नत्रय धारण करने से उनका मांस अमृत बन गया है? क्या कस्तूरी के समान सुगंध आने लगा? नहीं, मांस तो मांस, मांस अपने स्वरूप में रहता ही है। वो शरीर शुद्ध नहीं होता कभी, बनाया भी नहीं जा सकता, अशुद्ध ही रहेगा। हाँ, शरीर शुद्ध तब होगा जब वो अरहंत बन जाए, केवल ज्ञानी हो जाए, तो परम औदारिक हो जाएगा। इसमें से अपने आप सुगंधी फूटने लग जाएगी। तो जिसमें सुगंध आए वो अशुद्ध, और जिसमें सुगंध नहीं आता वो अशुद्ध। ये शरीर का लक्षण है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति के पश्चात यह शरीर परम औदारिक शरीर बन जाता है। इसके परमाणु सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं। ये अपने दुर्गंध स्वभाव को छोड़कर सुगंध स्वभाव को धारण कर लेते। पुद्गल है, पुद्गल परमाणु ही तो है ये। उसमें चार लक्षण है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। चार लक्षण है, स्पर्श, रस, गंध। गंध दो प्रकार के गंध इस पुद्गलों के पास है, सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। यदि आत्मा अरहंत अवस्था पर पहुंच जाए तो उसके वजह से ये पवित्र हो जाता, सुगंधित हो जाता, उसका ही वह प्रभाव है। क्योंकि तब तक के लिए वो जो सुगंध दुर्गंध परमाणु थे वो अशुभ नाम कर्म के उदय से थे। उस अशुभ नाम कर्म के उदय को जीवात्मा मिटा देता है, उन कर्मों को नाश कर देता है, तो शरीर के परमाणु भी सुगंध के रूप में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कारण, वैज्ञानिक कारण तो ये है। अशुभ नाम कर्म को नष्ट करने पर वो अशुभ नाम कर्म शुभ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो शुभ है पहले थे वो शुभ ही बचेंगे। तो इस प्रकार से शरीर में परिवर्तन आता है अरहंत बनने के बाद। पर अभी उन्हीं कर्मों को नष्ट करने में लगे रहते हैं मुनि महाराज, रत्नत्रय को धारण करके। रत्नत्रय से शरीर को पवित्र माना जाना चाहिए व्यवहार से, और है ही। आप लोग जैसे कहते हैं ना, महाराज आपके चरण घर में पड़ गए, हमारा घर पवित्र हो गया। तो पहला गंदा था क्या? और हमारे आने के बाद, जाने के बाद भी वही कचरा गिरा है, पवित्र कहाँ है? आपने झाड़ू नहीं लगाया। तो घर की पवित्रता का मतलब यह कि व्यवहार है, व्यवहार। रत्नत्रयधारी मुनि का चरण हमारे घर में पड़ गए तो हमारा घर पवित्र हो गया। घर पवित्र नहीं हुआ, आपका मन पवित्र हुआ। और मन का आरोप घर पर जाता है। हम धन्य हो गए, घर धन्य हुआ क्या? घर तो अचेतन हो, कैसे धन्य होगा? हम पवित्र हो गए, हमारा मन का मल धुल गया, हमारा पाप कर्म आपके दर्शन से नष्ट हो गए। व्यक्ति पवित्र होता है, पुद्गल वस्तु कभी पवित्र नहीं होती। हम पुद्गल वस्तु पर हम इसलिए डालते हैं कि हम पवित्र हो गए तो हमारा घर भी पवित्र है, ये हमारी भावना है, भावना है। टाइम हो गया, शेष विषय कल देखेंगे। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जय वंतो मां जग में जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे।
अब तक हम ऋषयान्द्र।